खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो कि यहोवा खुदा अपने पुकारने वालों को जवाब देता है, क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो अपने तालबों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करता। और यहाँ तक खुदा का कलाम जबूर नवीस कहता है कि जो कोई उसकी राहों के ऊपर चलते हैं वो उनसे किसी भी नेमत को बाज नहीं रखता। सो चंद लम्हों की खामोशी, चंद लम्हों के ध्यान में ज़रा खुदावंद खुदा की नेमतों के बारे में ज़रा सोचें, ना के गुनाह के बारे में, ना के कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी फिक्र जो हमें दबाती है, बल्कि उसके अजीब कामों के बारे में ज़रा सोचें जो गुजरे दिनों में उसने आपके लिए किए। चंद लम्हों की खामोशी में कादर मुतले खुदा, तू अजीब खुदा है। तेरे मोजज़े बयान से बाहर हैं लेकिन वो जाहिर होते हैं। तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, क्योंकि वो कुदरत वाला हाथ है। खुदावन तेरे कलाम की रोशनी में आज हम तेरे चेहरे के नूर में खुदाम खुदा अपनी जिंदगियों को खुदाम खुदा जांचे पहचाने और तेरे कलाम के आईना में खुदावन तेरी मोहब्बत के अक्स को देखने वाले बने। आज हम सबको बड़ी बरकत दे और इन तमाम अजीब कामों के लिए जो हम सोच रहे हैं, जो मौजज़ात तो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ करता है, उन सब के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़े मौजज़ा के लिए कि खुदावन हम जिंदा हैं, ज़िंदगी की सांस रखते हैं, जो तेरी तरफ से नेमत है। आज कलाम के वसीला से हम सब की हौसला अफजाई कर, हम सब की रहनुमाई कर। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम अपने मुखालफ के बारे में सीख रहे हैं, ताकि उसको जाने के वो कौन है, और हम जान रहे हैं कि अबलीस हमारा ऐसा अजली दुश्मन है जिसका एक ही मकसद है कि हमारी रूहानी जिंदगी और रूहानी रिश्ते को तबाह करना। उसका कोई और मकसद नहीं, सिर्फ यही मकसद है यूहन्ना की इंजील 10 बाब के मुताबिक कि चोर नहीं आता चोरी करने, बल्कि मार डालने और हलाक करने के लिए। ये चोर का मकसद है, मारना, हलाक करना, चोरी करना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क्या, क्या कहा? मैं इसलिए आया कि तुम सब जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी, कसरत की जिंदगी। इसलिए आज हम मत्ती की इंजील उसके 13 बाब की 24वीं आयत से इस तमसील पर गौर करेंगे और अपने दुश्मन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कल हमने देखा था कि हमारा दुश्मन शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है, यानी कि शेर की तरह उसकी नफ्सियात है कि वो किस तरह किसी ईमानदार को अलहदा करके बर्बाद करे, फाड़ खाए और उसकी रूहानी जिंदगी और रिश्ते को जो खुदा के साथ है उसे तबाह करे। आज हम दुश्मन के बारे में जानेंगे कि दुश्मन का मकसद क्या है। सो मत्ती की इंजील उसका 13वां बाप उसकी 24वीं आयत से पढ़ेंगे हम। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। पस जब पत्तियां निकली और बालें आईं, तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। घर के मालक ने नौकरों ने आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन ने किया है। नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने करने वाल करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खेते में जमा कर दो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सब की रहनुमाई हो। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या बातचीत कर रहे हैं, खेत के बारे में, कड़वे दाने, मीठे दाने, दुश्मन और कटाई। इस हिस्सा में खुदावंद यीशु मसीह उस आने वाले वक्त के बारे में बात कर रहे हैं जिसे दूसरी अदालत कहा गया है। दूसरी अदालत यानी जब यीशु मसीह आएगा सफेद तख्त अदालत पर बैठकर शरीर का और उन तमाम बनावटी रास्तबाजी के पैरोकारों का क्या करेगा, हिसाब करेगा। बाइबल मुकद्दस में दो अदालतों का जिक्र मिलता है, एक ईमानदारों की अदालत और एक गैर ईमानदारों की अदालत। ईमानदारों की अदालत को क्या कहा गया है, खुदावंद यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने उनको वहां पर सजा नहीं बल्कि अजर मिलेगा, जिसका हमें जिक्र मिलता है गालबन दूसरा करंथियों 10 बाब। दूसरा करंथियों 10 बाब हम जब देखते हैं तो वहां पर ईमानदारों की अदालत का जिक्र किया गया है, और उस अदालत में ईमानदारों को सजा नहीं मिलेगी। ईमानदारों को सजा नहीं मिलेगी, ईमानदारों को, माजर चाहता हूं, दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 10 आयत। दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 10 आयत। ये वो अदालत है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ईमानदार लोगों को, जिनके बारे में मुकाशवा की किताब में, जिनके बारे में पदेश की किताब में, जिनके बारे में तमाम नबिया और अंबिया असगर और अकबर के बारे में जिक्र मिलता है कि जो सब यीशु मसीह के लिए गवाही देते थे हलाक हुए, मारे गए, सताए गए, आरों से काटे गए, सलीब पर लटकाए गए और उबलते हुए तेल में डाले गए, उन सब की क्या होगी अदालत के, यीशु मसीह की अदालत के सामने क्या होगी, उनको उनका अजर मिलेगा। सो जब हम दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 10वीं आयत को देखते हैं तो यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले खा बुरे। ये वो अदालत है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह, ये अदालत जमीन पर नहीं होगी, खुदावंद के तख्त के सामने होगी। हमें नहीं बताया गया कि कहां पर होगी, लेकिन ये खुदावंद खुदा के आसमान पर होगी। वहां पर ईमानदारों को उनके कामों के मुआफिक बदला दिया जाएगा। अगर किसी ने किसी रासबाज शख्स को एक ठंडा प्याला पानी भी इस गरज से पिलाया है कि ये यीशु मसीह का है, तो वो अपना अजर नहीं खोएगा। अगर किसी ने किसी के लिए कोई भलाई की है यीशु मसीह में, तो ईमानदार होते हुए उसका अजर उससे छीना नहीं जाएगा। सो ये वो अदालत है जिसमें बदला दिया जाएगा, जिसमें अजर या सिला मिलेगा, जिसमें हमें बहुत सी तमसील सिखाई जाती है कि नौकरों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दिया गया और उन्होंने अपना काम फरमा बरदारी से किया, किसी को 5 शहरों पर, किसी को 10 शहरों पर हुक्मरानी मिली, और किसी को क्या कहा कि जिसके पास जो कुछ इसके पास है वो भी इसे ले लो। वो हमेशा की जिंदगी के बारे में नहीं, याद रखें, वो किस बात के बारे में बात हो रही है, अजर के बारे में। अजर बहुत से हैं, जिंदगी का ताज, जलाली ताज, खुशी का ताज, और फिर पादरी का सेहरा, और फिर ना मुरझाने वाला सेहरा, और फिर मुकाशवा की किताब में पहले दूसरे तीसरे बाप में हमें 7 मुख्तलिफ कलीसियाओं का जिक्र और उसमें 7 मुख्तलिफ अजर मिलते हैं, यानी खुदा के तख्त की अदालत, खुदा के फरदोस के सामने जाने का अजर। सो बाइबल मुकद्दस में बहुत ज्यादा अजर का जिक्र मिलता है। सो ये अदालत किन के लिए है, ईमानदारों के लिए। किन के लिए, ईमानदारों के लिए, यानी कि हर वो बेटी बेटा जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उनको अजर मिलेगा। कोई तो खुदावंद के मकदस में उस पिलर की मानद होगा। पिलर से मुराद ये नहीं कि हम थंबला बन के वहां पर खड़ा हो जाएंगे, नहीं। पिलर रोमी तारीख में पिलर जब बनाया जाता था तो उस पर उस बंदे के काम, उसकी तमाम वो क्या कहते हैं कि अजीबो गरीब जबरदस्त कहानियां जो उसने की हो, खा वो जंग में हो, खा वो पहलवान हो, खा वो दरोगा हो, खा वो स्कूल टीचर हो, खा वो डॉक्टर हो, उसकी तारीख लिखी जाती थी कि इस बंदे ने फलां फलां काम किए हैं, और यादगारी के लिए उस पर उसकी तमाम उन सिफतों को लिखा जाता था। सो ईमानदारों के लिए भी सिफतें लिखी जाएंगी कि फलां ईमानदार ने क्या किया। इसलिए कई ईमानदारों को तो हम देखेंगे कि आसमान की सोने की गलियों पर चलते हुए चमकते धमकते हुए नजर आएंगे और दूर से ही कहेंगे कि ये पालूस रसूल है, ये फलां बंदा है, ये फलां बेटी है, ये फलां ईमानदार है। लेकिन कुछ ईमानदारों की जो सिर्फ खुद परस्ती में जिंदगी गुजारते हैं, कहते हैं कि हमें कोई तलक नहीं, मसीह को जान लिया बात खत्म, कोई गिरजा नहीं जाना, कोई दुआ नहीं करनी, खुदा के लिए कोई जिंदगी बसर नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, उनका क्या होगा? उनकी किताब का हो सकता है एक वर्का लिखा जाए और किसी के हो सकते हैं 10 वर्ग के लिखे जाएं, और किसी का सिर्फ यही हो, नई पैदाइश 1995 8 तारीख और आगे कुछ भी नहीं। नहीं, किसी की तो पैदाइश होगी कि नई पैदाइश फलां फलां दौर में हुई और इसने मसीह के लिए दुख उठाया, मसीह के लिए ये किया, मसीह की गवाही दी, मसीह के लिए इसने जो कुछ हो सका किया, मसीह में अच्छा खामत बना, मसीह में अच्छी बीवी बनी, मसीह में अच्छा खादम बना, मसीह में अच्छा मुबशर बना। हो सकता है किसी की पूरी पूरी किताब लिखी जाए, खुदा जानता है। इसलिए हर रोज हमें जमीन पर रहते हुए अपनी जिंदगी के मकसद को जानने की जरूरत है। सो ये है वो पहली अदालत है। दूसरी अदालत जिसके बारे में मत्ती की अंजील 13वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं, वो है सफेद तख्ते अदालत, और इसका जिक्र हमें मुकाशफा की किताब में मिलता है। मुकाशफा 20वां बाप, 20वें बाप में खुदावंद खुदा का बंदा यूहन्ना रोया को देखते हुए, खुदा के उस निजाम को देखते हुए जो सच उसने देखा उसे उसने लिखा। सो 20वें बाप की जब हम 11वीं आयत से पढ़ते हैं तो इस अदालत को सफेद तख्ते अदालत कहा गया है। 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। ये सफेद तख्त पर बैठा हुआ सफेद जामा पहने हुए कौन है जिसके आगे से जमीन आसमान सब कुछ भाग गया? खुदावंद यीशु मसीह है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को जो उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गईं, और किताबें खोली गईं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक किताब हयात है और उसके बाद एक किताब है जिसमें ईमानदारों के नाम लिखे हुए हैं और उनके तमाम अच्छे ईमाल जो उन्होंने यीशु मसीह में किए बाद में जब उन्होंने निजात पा ली। तो किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, जिंदगी की किताब, जिसमें आप सबका नाम लिखा हुआ है अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो आपका निजात दहिंदा है। तो इस किताब में ईमानदारों के नाम लिखे हुए हैं, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। ये वो लोग हैं जो अपने ईमान की बुनियाद पर जिंदगी गुजारते थे और यीशु मसीह को उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हाँ ना कहा। और क्या लिखा है, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के ईमान के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। ये 20वां बाप उस वक्त की बात है जब जमीन पर बहुत बड़ा मुसीबत का दौर आएगा। कलीसिया जमीन पर मौजूद नहीं होगी, लेकिन ये वो लोग हैं जो मर गए जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, ये किसी भी मजहब से हो सकते हैं, कोई भी कबीला हो सकता है, कोई भी नस्ल हो सकती है। सो इन तमाम लोगों को क्या कहा गया है कि उनके ईमान के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने अपने ईमान को आला दर्जा दिया बजाय के खुदा के रहम, फजल और फ्री, जिसे कहते हैं कि मुफ्त बख्शिश को कबूल करने के। तो क्या लिखा है, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। आलमे रवा ने, यहां पर ईमानदारों की बात नहीं हो रही। इस हमें बात से फरेब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ईमानदार जब मरते हैं वो आलमे रवा में नहीं जाते। आलमे रवा कहाँ है? जमीन के नीचे। और आलमे बाला कहाँ पर है? आसमान पर। आलमे बाला पर खुदा की तारीफ कहने का मतलब तीसरे आसमान से लेकर पहले आसमान तक खुदा की तारीफ हो। सो ये उन लोगों का जिक्र है जिन्हें गैर ईमानदार कहा गया है, जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। मौत और आलमे रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के ईमान के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। किताबे हयात में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। ये 20वां बाप दूसरी अदालत की तरफ इशारा है, और यही बात खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की अंजील में कर रहे हैं, और मत्ती ने इन बातों को लिखा। ये आज तारफ ही था इस अदालत के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर कि एक आदमी की मानद है बादशाही, उस खेत की मानद है जिसमें अच्छा बीज बोया गया। अच्छा बीज किसे कहा गया है, किसी को पता है जी? जानना चाहते हैं जी? अच्छा बीज ईमानदारों को कहा गया है, खेत दुनिया को कहा गया है, काटने वाले फरिश्तों को कहा गया है, और फिर कड़वे दाने शरीर के फर्जंद यानी के गैर ईमानदारों को कहा गया है। ये गैर ईमानदार किसी भी कबीले से, यहूदी फरीसी कोई भी हो सकता है। तो कड़वे दाने किनको कहा गया है? गैर ईमानदारों को। और कटाई दुनिया का आखिर है, और गत्थे बांधकर आग में डाले जाना ये क्या है? दूसरी मौत है। क्यों ये सब कुछ आपको बता रहा हूं? इसी बाब में इसकी तफसील दी गई है, क्योंकि उस दौर में शिगिर्दों को भी यीशु मसीह की समझ नहीं आती थी। बहुत दफा जब यीशु मसीह कहता था कि ये करो तो वो कहते थे क्या यीशु, तेरा मतलब क्या है? आज हम भी बहुत दफा कहते हैं कि पादरी साहब ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी तफसील कहाँ मिलती है। इसी बाब को आगे देखें, मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 36वीं आयत से। 36वीं आयत में पिछली तमसील की तफसीर की गई है, यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के लिए की, आज आप सबके लिए और मेरे लिए है। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, और उसके शिगिर्दों ने उसके पास आकर कहा, खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। यानी कि जो कुछ यीशु मसीह ने क्या होना दे, सिर तो नांग गया, समझ नहीं आई। तो खुदावंद यीशु मसीह को शिगिर्दा ने क्या कि खुदावंद सानू कड़वे दाने की तमसील समझा दे। यीशु मसीह सिखा रहे गए। 37वीं आयत, उसने जवाब में कहा कि अच्छा बीज, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। इब्ने आदम जिन्हें बीज बोया कौन आ? खुदावंद यीशु मसीह, पहली गल। और खेत दुनिया है, खेत क्या है? दुनिया है। और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद, बादशाही के फर्जंद कौन है? यीशु मसीह के मानने वाले, माजी ने कहा ईमानदार। तो अच्छा बीज क्या है? ईमानदार। क्या है? ईमानदार। और आगे, कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद है, किसके शरीर के? शैतान के मानने वाले, यीशु मसीह के नहीं। सो कड़वे दाने क्या है? यीशु मसीह के नहीं बल्कि शरीर के मानने वाले। जिस जिस दुश्मन ने उनको बोया। दुश्मन कौन है? अबलीस। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है, शैतान, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। और कटाई दुनिया का आकर, और कटाई दुनिया का आकर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं, और काटने वाले फरिश्ते हैं। पस जैसे कड़वे दाने जमा, पस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में डाले जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। दुनिया के आखिर में होगा, ये है वो दूसरी अदालत, जिसमें गैर ईमानदारों को दूसरी मौत का सामना होगा। आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हमें इस आग में से गुजरने के कोई भी तजर्बा नहीं होगा, क्योंकि हम जब ये अदालत की जाएगी तो यीशु मसीह के मुखालफ नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे। हम बकरियां नहीं होंगी, बकरियां भी, ये भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है समझाने के लिए, बकरियां गैर ईमानदारों को जाहर किया गया है, और भेड़े मसीह के अपने ईमानदारों को। हम यीशु मसीह के खिलाफ नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे, इसलिए हम दूसरी आग में फेंके नहीं जाएंगे। इस खुशखबरी को आप अपने घरानों में, जहां कहीं काम करते हैं, बयान कर सकते हैं कि यीशु मसीह में हम महफूज हैं। इसलिए अपने दुश्मन के बारे में जानना और उसे जानना बहुत ही जरूरी है। सो आए हम खुदा के हुजूर झुकें, कभी भी किसी के फरेब में ना आए। अगर कोई आपको कहे कि जी यीशु में ईमान रखते हैं लेकिन ये हवाला आपको कहता है कि आप आग की झील में जाएंगे, वो झूठा है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ कहता है वो सच कहता है और वो कभी भी बदलता नहीं। खासकर जब वो कहता है मुझ पर ईमान लाओ तो हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है। यीशु मसीह हमारे साथ खेल नहीं खेलता, वो जुगतबाजी नहीं करता कि जुगत के तौर पर मैंने कहा था, नहीं, वो सच्चा है, सच बोलता है, इसीलिए उसका नाम सच और बरहक और आमीन है। कादरे मुतले खुदा, आज के कलाम के वसीला से हम सब की खुदा हूँ खुदा हौसला अफजाई हो कि हम तेरे हैं, और सवाल ये है कि ज़मीन पर रहते हुए तेरे लिए ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमें अजर मिलेगा। सवाल यह है कि खुदा हम खुदा हम सबको कुव्वत और ताकत देता कि हमारी जो किताब तू अब लिख रहा है उस किताब में हम इस लायक ठहरें कि जब तेरे हजूर आए तो कहें खुदा हम खुदा जो कुछ तूने हमें दिया हमने उससे दुगना किया, और इन मुबारक लबों से, तेरे मुबारक लबों से ये अजीम अल्फाज सुनने वाले बने, शाबाश मेरे वफादार नौकर, शाबाश मेरे वफादार खादम, शाबाश मेरे वफादार बेटे और बेटी। वो बादशाही जो बनाए आलम से पेशतर मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, आओ और उसमें खुदावंद खुदा के हजूर खुशी करो। खुदा बाप हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।